आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, डीजीपी ने बताया बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद लगभग 200 नवनियुक्त चिकित्सकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी रहेंगे मौजूद। झारखंड हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए शिक्षा सचिव, अदालत ने जेटेट परीक्षा होने तक शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी करने पर लगाई रोक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर किया जा रहा है याद, प्रधानमंत्री ने कहा अंत्योदय में सामाजिक न्याय की मजबूती, प्रदेश भाजपा ने भी दी श्रद्धांजलि। और राज्य स्तरीय अंडर 17 और अंडर 19 बालक बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज से रांची में, 1100 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 10 माओवादियों ने आज चाईबासा में राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादियों में कम उम्र की महिला सदस्य भी शामिल हैं। डीजीपी ने इसे पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी ही देर बाद राजधानी रांची में आयोजित समारोह में लगभग 200 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इन डॉक्टरों में 100 नियमित सरकारी डॉक्टर और 100 संविदा पर नियुक्त होने वाले चिकित्सक शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि निचले स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करना सरकार का लक्ष्य है।
फाइनेंशियल बेड के माध्यम से डॉक्टर्स को हम बहाली कर रहे हैं। गवर्नमेंट के भी नियुक्ति पत्र है और संविदा पर भी है, तो सब मिला के लगभग 200 डॉक्टर्स हैं। मुख्यमंत्री अमित सोरेन जी जनता को सौगात देंगे, वो भी यही है कि जनता तक डॉक्टर पहुंचे, उनका इलाज करें, गांव तक हमारे डॉक्टर पहुंचे और अच्छा इलाज करें, गुणवत्ता इलाज करें, ताकि लोगों को विश्वास हो कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था भी कोई चीज है।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार के बाद दवाइयों की कीमतों में भी कमी आई है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के दवा विक्रेता नीरज ने बताया कि 22 सितंबर से सभी दवाओं पर जीएसटी की नई दरों को लागू कर दिया गया है। इससे आम जनमानस को राहत मिली है।
केंद्र सरकार ने पिछले 22 सितंबर से एक बहुत ही अच्छी पहल ली है, जिसमें जो भी 12% और 18% की जीएसटी दरों पे दवाइयाँ आती थी वो अब 5% में आ गई है, जिससे लोगों को दवाइयों की कीमत पे अच्छा खासा फर्क दिख रहा है। दवाइयाँ 8% से लेकर के 15% तक कम दरों पे आ रही है। इससे लोगों को जो दवाई पहले महंगी पड़ती थी अब कुछ हद तक सस्ती हो गई है, तो लोगों को फायदा हो रहा है।
झारखंड हाईकोर्ट में आज जेटेट परीक्षा मामले पर सुनवाई हुई। अदालत के आदेश पर राज्य के शिक्षा सचिव सशरीर उपस्थित हुए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया कि जब तक जेटेट परीक्षा नहीं होती तब तक राज्य में शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी न किया जाए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और अब हमें किसी भी देश में निर्भर रहना मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय में सामाजिक न्याय की मजबूती रही है।
दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय, गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर आज प्रदेश भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय के सिद्धांत वास्तव में प्रत्येक देशभक्त के लिए प्रेरणादायक हैं।
पंडित दीनदयाल जी ने दो महत्वपूर्ण विषय को उन्होंने प्रतिपादित किया। एक तो उन्होंने अंत्योदय यानी जो विकास के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं उनको विकास के पहली कतार में कैसे ले आना, उसके लिए उन्होंने अंत्योदय प्रारंभ किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हीं सपनों को आज पूरा कर रहे हैं।
जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नवाचारों के माध्यम से भारत के रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है। एक रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स पहल अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था। यह अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षा जगत, उद्योगों, स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत नव प्रवर्तकों को शामिल करके रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करता है। महाबलीपुरम में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन और आईडेक्स का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।
गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर डिफेंस सेक्टर। आवर टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप हैज बीन रिलीज्ड टू हेल्प द इंडस्ट्री इन प्लानिंग एंड इनिशिएटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड प्रोडक्शन अरेंजमेंट।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षा जगत को शामिल करके आईडेक्स ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायता के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया है। अपने प्रभाव को मजबूत करते हुए सशस्त्र बलों ने आईडेक्स समर्थित स्टार्टअप्स और एमएसएमई से 2400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 43 वस्तुएं खरीदी हैं, जो रक्षा तैयारियों के लिए स्वदेशी नवाचार में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इस भागीदारी ने भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन समाधानों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने में मदद की। आईडेक्स ने पहले ही सकारात्मक परिणाम देने शुरू कर दिए, जिससे रक्षा प्रणालियों के विकास में योगदान मिला है। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। आखिरी रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 224 अंक गिरकर 81,491 पर और निफ्टी 64 अंक गिरकर 24,993 पर आ गया। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,06,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,41,000 रुपये प्रति किलो है। खूंटी जिले के तूतटोली गांव निवासी मोनिका कुमारी ने लगातार मेहनत और लगन से तीरंदाजी में अपनी पहचान बनाई है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता।
खूंटी जिले के तूतटोली गांव निवासी मोनिका कुमारी ने लगातार मेहनत और लगन से तीरंदाजी में अपनी पहचान बनाई है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद मोनिका ने सिल्ली कॉलेज में आयोजित रांची यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज तीरंदाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 70 मीटर वर्ग में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर कॉलेज और विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि के साथ ही मोनिका को पंजाब की गुरु काशी यूनिवर्सिटी में 23 से 31 अक्टूबर तक होने वाली ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप में रांची यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
झारखंड की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से खेलो झारखंड अंतर्गत राज्य स्तरीय अंडर 17 एवं अंडर 19 बालक बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज से खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, डीजीपी ने बताया बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद लगभग 200 नवनियुक्त चिकित्सकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी रहेंगे मौजूद। झारखंड हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए शिक्षा सचिव, अदालत ने जेटेट परीक्षा होने तक शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी करने पर लगाई रोक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर किया जा रहा है याद, प्रधानमंत्री ने कहा अंत्योदय में सामाजिक न्याय की मजबूती, प्रदेश भाजपा ने भी दी श्रद्धांजलि। और राज्य स्तरीय अंडर 17 और अंडर 19 बालक बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज से रांची में 1100 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।